प्राचीन काल की बात है। उस समय देश पर मौर्य वंश के शासक बिंदुसार शासन था। राज्य बहुत बड़ा होने के कारण कहीं कहीं से विद्रोह के समाचार भी आ जाते थे, जिन्हें सम्राट विभिन्न उपायों द्वारा कुचल दिया करता था। एक बार तक्षशिला में विद्रोह हो गया। वहाँ की जनता ने सम्राट बिंदुसार के सभी अधिकारियों और सैनिकों को मार भगाया। सूचना मिलने पर सम्राट ने मंत्रियों की सभा बुलाई। सभा में निश्चय हुआ कि वीर श्रेष्ठ कुमार अशोक को सेना के साथ भेजा जाए, क्योंकि वह राजकुमार वीर ही नहीं गंभीर भी हैं। सम्राट की आज्ञा पाते ही कुमार अशोक बहुत बड़ी सेना सजाकर तक्षशिला को चल पड़ा। उधर तक्षशिला के लोगों को जब पता चला कि राजकुमार अशोक हमें दंड देने के लिए आ रहा है, तो वहाँ के लोगों ने नगर को रंग बिरंगे फूलों और पत्तों से सजाया और साथ ही कई मीलों तक का मार्ग पत्थरों और कांटों से बिल्कुल साफ कर दिया। इस मार्ग को स्थान स्थान पर सुंदर द्वारों, रंग बिरंगी झाड़ियों और केले वृक्षों से ऐसे सजाया कि देखते ही बनता था। नगर के प्रतिष्ठित लोगों ने हाथों में मंगल हार लेकर नगर से कई मील दूरी तक आगे बढ़कर राजकुमार अशोक का स्वागत किया। उन्होंने आते ही राजकुमार और उसके साथियों पर फूलों की वर्षा की। राजकुमार अशोक की जय, सम्राट बिंदुसार की जय, मौर्य साम्राज्य अमर रहे के नारों से आकाश गूंज उठा। बड़े आदर और सम्मान के साथ राजकुमार को तक्षशिला में ले जाया गया। उन्हें वहां सुंदर भवन में ठहराया गया। साथ आए हुए सैनिकों को भी सुंदर सुंदर स्थान रहने के लिए दिए गए। सबके खाने पीने का उत्तम प्रबंध किया गया। यहाँ लोगों का प्रेम देखकर राजकुमार अशोक बड़े प्रसन्न हुए। यही दिन धूमधाम से दरबार लगाया। सभी नगरवासी, यहाँ तक कि बच्चे और बूढ़े अपने राजकुमार के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। दरबार के लगते ही सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब सब ने खड़े होकर राष्ट्रीय तराना गाया। फिर मन को मोहने वाले कई तरह के संगीत और बाजे बजाए गए। बड़े मधुर स्वर में गायक गायिकाओं ने राजकुमार और उनके साथ आए हुए लोगों के मन को लुभाया। अब नगर सेठ ने उठकर राजकुमार अशोक की आज्ञा पाकर कहना शुरू किया, प्रियदर्शी राजकुमार, ना तो हम आपके विरुद्ध हैं और ना ही हमें सम्राट बिंदुसार से कोई शिकायत है। आपके जो अधिकारी यहाँ राज्य करते रहे, वे बड़े ही दुष्ट थे। वे लोग हमें स्थान स्थान पर अपमानित करते थे। उनका अन्याय इतना बढ़ गया था कि जनता उसे सह ना सकी और विद्रोह फैल गया। अब आप हमारे सिर आंखों पर रहिए और शासन की बागडोर संभालिए। मैं सभी नगरवासियों की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया जाएगा। नगर सेठ के बैठने पर राजकुमार अशोक ने उठकर कहा, तक्षशिला के निवासियों, जो जो भूले हमारे अधिकारियों से हुई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे के लिए आप लोगों के साथ पूरा पूरा न्याय होगा। अंत में मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। जो प्रेम आप लोगों ने मेरे और मेरे साथियों के साथ दर्शाया, जिस स्वच्छ हृदय के साथ आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, उससे मौर्य वंश और तक्षशिला निवासियों का बहुत गहरा और पक्का संबंध सदा के लिए जुड़ गया है। नगर निवासियों ने राजकुमार को अनेक दुर्लभ और अमूल्य वस्तुएं भेंट की। इसके बाद राजकुमार की जय के बीच दरबार समाप्त हुआ। अब राजकुमार अशोक तक्षशिला में रहकर वहाँ का राजकाज देखने लगे। उनके गुणों से वहाँ की जनता बहुत प्रसन्न और सुखी हुई। सम्राट बिंदुसार की आज्ञा पाने पर अशोक पाटलिपुत्र लौट गए। अब तो इनका यश चारों ओर फैल गया। सम्राट ने अशोक को उज्जैन का शासक बना दिया। अशोक अपने गुणों से उज्जैन में भी लोगों के हृदय पर राज करने लगे। लोग इस राजकुमार को देख फूले ना समाते थे। इस बीच एक बार फिर तक्षशिला में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस बार सम्राट ने अपने बड़े पुत्र राजकुमार सुमन को सेना देकर विद्रोह दबाने के लिए भेजा। ये सेनाएं तक्षशिला के पास जा पहुंची। इस बार ना तो उन लोगों ने मार्ग सजाए और ना ही मंगल हार लेकर स्वागत के लिए आए। इस बार तो वहाँ के लोगों ने शस्त्र हाथ में लेकर सामना किया। घोर युद्ध हुआ। सम्राट बिंदुसार के बड़े वीर सैनिकों की सेना के साथ होते हुए भी सुमन सफल ना हुआ। अपनी सेना का बहुत बड़ा भाग युद्ध भूमि में खोकर राजकुमार निराश होकर राजधानी लौट आया। ये सब समाचार पाकर सम्राट बिंदुसार ने उसी समय राजकुमार अशोक के पास आज्ञा भेजी कि शीघ्र तक्षशिला जाओ और विद्रोह शांत करो। पिता की आज्ञा पाते ही अशोक फिर एक बार तक्षशिला पहुँचे और लोगों को बड़े प्रेम से अपने वश में किया। इस प्रकार यह विद्रोह शांत हुआ।